Om Shanti. Good morning.
सब आज फ्रेश है,
एकदम फ्रेश है, या सुन सुन करके भारी हो गए हैं, हल्के हो गए हैं सुन के, अच्छी बात है। ये तो भारी नहीं है कि पास कैसे होंगे ऐसे, नहीं। अभी हम देखेंगे थर्ड किताब का फर्स्ट यूनिट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी माना क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। जो अंदर है वही बाहर, ऑनेस्टी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑनेस्टी ऑफ द हायर लेवल, इंटीग्रिटी माना। जो मन में है वही बाहर दिखाई दे। तो ये इंटीग्रिटी बहुत जरूरत है आज की दुनिया में, क्योंकि हमेशा हम अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग मास्क, अलग अलग फेसेस डाल के घूमते हैं। हम सोचते हैं कि उनको मेरे हिस्से के बारे में पता नहीं होना चाहिए, इन लोगों को इस हिस्से का पता नहीं होना चाहिए। सो वी ट्राई टू हाइड सम थिंग्स फ्रॉम पीपल। तो वो हाइडिंग करने से क्या होगा? वो लाइटनेस नहीं रहता, हमेशा मैनिपुलेशन करते रहेंगे कि तो इतना सोचना पड़ता है। जैसे दादियां कहती है ना, सच बोलना कितना सहज है, झूठ बोलने के लिए बार बार सोचना पड़ता है। लास्ट टाइम कौन सा झूठ बोला था, तो उसके आधार से उसके सामने वही झूठ बोलना पड़ता है। तो वो इतना याद रखना पड़ता है कि लास्ट टाइम कौन सा बहाना दिया था, तो अभी कौन सा बहाना दूं, है ना। तो लेकिन सच तो एक ही होता है, तो सच बोलना बहुत सहज होता है। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम क्या बोला था। तो लास्ट टाइम भी सच बोला था, तो अभी भी सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता, है ना। तो भारीपन होता है जब इंटेग्रिटी नहीं होता, तो भारीपन होता है। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या है और उसकी गहराई में इस यूनिट में हम देखेंगे। इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट वैसे तो कहा जाता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट यूजुअली जनरल शब्दों में, अगर कैरेक्टर की बात हम करते हैं, दो मुख्य बातों के लिए हम कैरेक्टर कहते हैं। कौन कौन से दो मुख्य बात होता है कैरेक्टर में? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। एक है रिलेशनशिप, पवित्रता, राइट। कैरेक्टर माना पवित्रता की जरूरत होती है। यूजुअल जनरल वे में, जो दुनियावी बातों में, कैरेक्टर माना पवित्रता की बात आ जाती है। और दूसरा है धन की शुद्धि। धन में अगर एराफेरी करते, करप्शन करते हैं, ये करते हैं, तो वो भी कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर में नहीं गिना जाता। यूजुअली ये दो बातें कैरेक्टर में मुख्यतः देखा जाता है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट इससे भी बहुत गहरा है। केवल वही दो बातें नहीं है, लेकिन अंदर की शुद्धि, अंदर की ऑनेस्टी, ये सब काउंट करता है। दे आर द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। कितनी जितना शुद्धता है अंदर, तो फिर उसके आधार से हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म होते हैं। दे आर द क्राइटेरिया, दे आर द फाउंडेशन। They encourage us to make choices that generate inner harmony and avoid choices that create discordance and a sense of being at odds with our inner self. जिस व्यक्ति के अंदर इंटीग्रिटी है, उसके जो decisions हैं, वो जब भी कोई decision लेगा तो किसका सुनेगा? Inner voice. इनर वॉइस का सुनेगा। अगर विवेक कुछ खा रहा हो, अंदर वॉइस, इनर वॉइस कुछ और कह रहा है और वो कुछ और करे, उसको इंटीग्रिटी कहेंगे, नहीं कहेंगे, है ना। तो इसलिए इनर वॉइस को वो हमेशा सुनेगा और ही इज ऑलवेज इन कॉर्डेंस कनेक्शन विद द इनर वॉइस। तो जो वो विवेक कहता है या फिर इनर वॉइस कहता है वैसा ही वो करता है। इंटेग्रिटी माना डूइंग व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। जब इजी है तो बहुत सहज है करना, लेकिन जब मुश्किल है तब वो राइट बात करना, राइट कर्म करना, वो है इंटेग्रिटी। क्योंकि बहुत ही हैज टू फेस अ लॉट ऑफ ऑड्स। जस्ट लाइक कहते हैं आजकल की दुनिया में ऑनेस्ट रहना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल तो है, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम ऑनेस्ट होकर के रहे ना, दैट इज इंटेग्रिटी। सो देर आर फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी। उसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ योर क्राइटेरिया फॉर एथिकली करेक्ट और इनकरेक्ट बिहेवियर। आपको अच्छी रीति पता है कि करेक्ट बिहेवियर क्या है और इनकरेक्ट बिहेवियर कहा क्या है। फिर से मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपना टेक्स्ट बुक्स बंद करके रखिए। सभी क्लासेस में आपको शायद ये इंस्ट्रक्शन मिलता होगा, फिर से खोल के बैठ जाते हैं। You are fully aware of your criteria for ethically correct or incorrect behavior. Correct behavior क्या है, incorrect behavior क्या है, right क्या है, wrong क्या है, वो अच्छी रीति आप समझते हैं, न केवल सुनी सुनाई बातों पर। अगर हमारे बड़ों ने बोला है कि ये करना right है, ये करना wrong है, केवल वो सुन के करने की बात नहीं है, सुनने के बाद समझने की बात है। अगर हम बड़े बच्चे थे जब, तो बड़ों ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। तो झूठ बोल, ठीक है, बड़ों ने कहा, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा है झूठ नहीं बोलना है, इसलिए नहीं बोलना है, वो तो एक बात है। लेकिन अगर अच्छी रीति मुझे समझ है क्यों नहीं बोलना चाहिए झूठ, तो कैसे भी परिस्थिति आए तो उसमें उस प्रिंसिपल, उस एथिक के साथ हम खड़े रहेंगे, है ना। तो केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं, लेकिन समझ के आधार से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अच्छी रीति समझ करके फिर करना। दैट पर्सन इज कंप्लीटली अवेयर ऑफ एथिक, व्हाट इज एथिकली करेक्ट एंड व्हाट इज एथिकली इनकरेक्ट। लेकिन अगर बड़ों ने कहा है झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन कई बार हमको झूठ बोलना पड़ता है, तो उस परिस्थिति में झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? एथिकली करेक्ट हो तो बोलना चाहिए। झूठ बोलना रॉन्ग है या राइट है? झूठ एथिकली करेक्ट हो ही नहीं सकता, कुछ लोगों की मान्यता ये है। ओके, झूठ बोलना नहीं चाहिए। युक्तियुक्त बोलना चाहिए। युक्तियुक्त माना झूठ आ गया वहां? युक्तियुक्त माना झूठ आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन बाबा कहते हैं युक्तियुक्त होना चाहिए, तो संगम में अलाउड है झूठ बोलना, लेकिन सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अलाउड नहीं है, संगम में अलाउड है। हाँ, अश्वत्थामा का युक्ति युक्त। तो वैसे मशहूर एक कहानी हम बताते हैं ना, कि एक संत पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए बैठे थे और एक गाय को देखा जाते हुए, और उसके पीछे पीछे वो कसाई वो अपना ये लेकर के आ रहा था, तो उसने संत को पूछा कि महाजन आपने गाय को देखा जाते हुए, तो उस समय सच बोलना राइट है या रॉन्ग है? उस टाइम पे सच बोलना एथिकली रॉन्ग हो जाता है और झूठ बोलना एथिकली राइट हो जाता है। लेकिन झूठ बोला उसका कुछ पाप लगेगा? झूठ तो झूठ होता है, सच तो सच होता है। युक्ति से, उस परिस्थिति में युक्ति से कैसे बताएंगे? मान लीजिए आप ही बैठे थे वहां पेड़ के नीचे, अच्छा देखा है लेकिन बताऊंगा नहीं, दैट इज राइट। ओके, वो झूठ हो जाएगा ना, झूठ हो गया ना, वो झूठ बोलना चाहिए। ओके और कितने सारे ओपिनियंस आते हैं, देखिए एक ही परिस्थिति है लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। हाँ हाँ, सबका राइट है अपने नेचर के हिसाब से, लेकिन अगर एथिकली भी राइट हो वो झूठ, लेकिन झूठ का तो भोगना पड़ेगा हमें। वो मान लीजिए मैंने चीटिंग करके पैसा कमा लिया, राइट, उसमें से थोड़ा बहुत मैंने दान दे दी, चीटिंग किया पाप लगा कि नहीं लगा? पाप तो लगा, लेकिन उसमें से दान दे दी 10% 20% जितना भी दान देना था। तो यूजुअली बिजनेसमैन क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, चीटिंग करके वो कमाते हैं लेकिन दान पुण्य भी ज्यादा करते हैं, तो क्योंकि पाप का जो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो फिर मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न ध्यान से सुनिए, पहले प्रश्न ये है, जो पाप किया और दान दे दी वो न्यूट्रलाइज हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लेकिन प्रॉफिट तो था, तो प्रॉफिट में से थोड़ा लगाया ना, कर्म की गुयक। अच्छा नहीं करने का, लेकिन फिर पेट का क्या होगा फिर? अच्छा एक्चुअली जो हम पाप करते हैं उसका तो लगेगा लगेगा, और पुण्य जो करते हैं उसका भी भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं कभी भी न्यूट्रलाइज होता है। जितना पाप है उतना वो भोगना पड़ेगा, जितना पुण्य है उसका भी भोगना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं ना कि जो अमीर होते हैं उनको तो सुख सुविधा सब कुछ है लेकिन मेंटल पीस नहीं है। ओके, तो उसकी सुख सुविधा का आनंद तो वो पुण्य का है, तो इसीलिए पैसा आ रहा है, पुण्य के बिना तो पैसा नहीं आता है ऐसे। तो ऐसे एक यहाँ एक सिरोही के पास एक व्यक्ति है, वो अनपढ़ है लेकिन उसकी आमदनी महीने का 12 लाख, सोचिए 12 लाख महीने का। वो अनपढ़, आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इतने पढ़े लिखे हैं, आईआईटी में भी पढ़े हुए हैं, महीने का 1.5 लाख 1 लाख कमाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति 12 लाख आमदनी है, सोचिए। तो कैसे कमा रहा है? वो ऑनेस्टी से ही कमा रहा है। ऐसा है उसका कि जो भी लेबरर्स है आसपास के, तो उसका वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, तो जहां भी चाहिए वो लेबरर्स को प्रोवाइड करता है। तो वो प्रोवाइड, जो भी लेबरर्स जहां भी है, हमारे संस्था में भी लेबरर्स उसके हैं, तो जो भी लेबरर है दिन के 20 रुपीस कमीशन हो लेता है। तो ऐसे कितने, शायद 1000-2000 उनके लेबरर्स है उनके इसमें, तो हर एक का जब 20-20 रुपया एक दिन का कटता है और उसके अकाउंट में जाता है, तो गिनती किया तो महीने का 12 लाख ऑनेस्ट अर्निंग है, ऐसे तो डिसऑनेस्ट अर्निंग नहीं है। तो पुण्य है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई जन्म का, तो इसीलिए मिला ना, तो मिल रहा है तो इसे कहने का भावार्थ है कि जो पाप है उसको भी हमें भोगना पड़ेगा और पुण्य है उसको भी हमने हमको भोगना पड़ेगा, वो न्यूट्रलाइज कभी नहीं होता है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज एथिकली करेक्ट एंड व्हाट इज एथिकली इनकरेक्ट एट दैट टाइम, उस परिस्थिति के लिए क्या है। इसीलिए वो जो संत है थोड़ा बहुत झूठ बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, उसका थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन उसका पुण्य का काटा जो है वो उसके बेंट में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए पुण्य करना, झूठ बोल के पुण्य करना वो रॉन्ग नहीं है। थोड़ा बहुत हमने ये कर लिया। यू चेक दैट योर प्रिंसिपल्स आर कंसिस्टेंट एंड कोहरेंट, यू इंटीग्रेट और ओन द प्रिंसिपल्स ऑन विच यू एक्ट। जीवन का एक प्रिंसिपल बना लेते हैं, जैसे अगर हम ऑनेस्टी को प्रिंसिपल बना दिया जीवन का, तो हमेशा हर परिस्थिति में हर समय हम ऑनेस्ट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ परिस्थिति में हम ऑनेस्ट रहे, कुछ परिस्थिति में हम ऑनेस्ट नहीं रहे, नहीं, बिकॉज दैट हैज बिकम द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, वी ओन इट। हम उसके मालिकत्व को ले लिया, आई बिकम द ओनर ऑफ दैट वैल्यू, सो आई एग्जिबिट दैट वैल्यू एवरी मोमेंट एंड एवरी टाइम। यू आर प्रिपेयर टू चैलेंज प्रिवेलिंग आइडियाज दैट आर एट ऑड्स विद योर प्रिंसिपल। जैसे ऑनेस्ट का प्रिंसिपल ले लिया, उसको मैंने मान लिया कि ठीक है मुझे किसी भी परिस्थिति में ऑनेस्ट रहना है, लेकिन अगर कोई परिस्थिति उसके अगेंस्ट आए, कोई आकर के प्रलोभन दिखाया, या फिर केवल ऑनेस्टी पैसों में नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी है और अपने साथ भी है ऑनेस्टी। क्या मैं कुछ सोच कुछ और रही हूं और बोल कुछ और रही हूं, वो भी डिसऑनेस्ट हो जाए। फीलिंग कुछ और हो रहा है और मैं दिखा कुछ और रही हूं, वो भी डिसऑनेस्ट हो जाता है। तो हर परिस्थिति में अगर कोई ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कोई ऐसा परिस्थिति आता है विच इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल, तो वो मैं फिर भी अपने वैल्यू को एग्जिबिट करके दिखाती हूँ, अपने प्रिंसिपल को एग्जिबिट करके दिखाती हूँ। यू रेजिस्ट डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसी। इंटीग्रिटी माना नो हिपोक्रेसी, नो डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड्स माना हम किसी को बोलना कुछ और करना कुछ और हो जाता है। जैसे अगर पंडित होते हैं तो वो भाषण कर रहे हैं बैंगन नहीं खाना है, रात के भोजन में जाकर के वो बैंगन का भरता खा रहा है, तो ये हो गया। प्रीचिंग कुछ और है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए प्रीच करने से पहले, दूसरों को कुछ बोलने से पहले खुद को प्रैक्टिस। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो हिपोक्रेसी। You have taken the time to assess each belief you have acquired from the social environment. जो भी belief system है बचपन से हमें दिया गया है, शायद वो parents से या फिर समाज से, जो भी belief system है, तो उसको मैं अच्छी रीति assess करती हूँ, अच्छी रीति समझती हूँ ये क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। तो अच्छी रीति समझ करके फिर मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ। बिलीव को ऐसे ही ब्लाइंडली हम फॉलो करते हैं तो ब्लाइंड फेथ हो जाता है ना। ब्लाइंड फेथ में बहुत सारी बातें आ जाती है। ब्लाइंड फेथ में बिल्ली क्रॉस कर लिया रोड तो सोचेंगे कि अगर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, सोचते हैं कि ये तो होगा नहीं, तो इसलिए वापस आते हैं, या फिर तीन स्टेप्स पीछे आकर के फिर वापस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिलीव सिस्टम्स हैं, तो ये सब ब्लाइंड फेथ है। ये सब लोगों ने कहा हमने मान लिया। हमारे मनोस्थिति, हमारे स्टेज बहुत पावरफुल होना चाहिए। ये सभी जो भी चीजें हैं वो अफेक्ट नहीं करता। व्हेन वी आर इन सोल कॉन्शियस स्टेज नथिंग अफेक्ट्स। तो इसीलिए जितना हो सके उतना आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। यू चेक वेदर योर मोटिवेशंस आर कॉन्ग्रुएंट विथ योर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ पीस, लव, प्योरिटी, पावर एंड ब्लिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मोटिवेशंस बहुत होते हैं जीवन में, बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ करना है, राइट? बट दे हैव टू बी वेरी मच इन लाइन विद द इनर वैल्यूज। कमाना रॉन्ग है, राइट है? राइट है, कमाना तो जरूरी है लाइफ के लिए, लेकिन डिसहोनेस्ट वे में कमाना वो रॉन्ग है। मेहनत करके, जितना भी हम मेहनत करके कमाते हैं वो राइट है, राइट? सो इसीलिए इट हैज टू बी इन लाइन विथ अवर इनर क्वालिटीज। जो भी हम करते हैं, जो भी मोटिवेशंस है, एम्बिशंस है लाइफ में, वो होना चाहिए, बट प्रोवाइडेड दे हैव टू बी इन लाइन विथ अवर इनर क्वालिटीज। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू आर रिफ्लेक्टिव अबाउट योर ओन बिहेवियर एंड यू सीक बैलेंस। बार बार अपने बिहेवियर को देखते हैं, बार बार उसको अगर कुछ गलत कुछ कर लिया है तो उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू रिफ्लेक्ट अवर बिहेवियर? रात को, है ना? रात को बैठ करके जब बाबा को गुड नाइट बोलते हैं, तब पूरे दिन में हमने क्या क्या किया है, और कहीं भी लगता है कि मैंने इस परिस्थिति में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इस परिस्थिति में थोड़ा मैं कुछ गलत कर दिया, तो वो रिफ्लेक्ट करके फिर नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा आता है तो वो चेंज करने की डिटर्मिनेशन हम रखते हैं। तो वो बेस्ट टाइम टू रिफ्लेक्ट इज एट नाइट बिफोर स्लीपिंग। यू कंटिन्यू रिफाइनिंग योर कैपेसिटी फॉर मॉरल रीजनिंग, यू मेंटेन एन ओपन माइंड। कैपेसिटी को बढ़ाने की क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश हम हमेशा जारी रखते हैं, और हमेशा ओपन माइंड हम रखते हैं। क्लोज माइंड रखने से क्या नुकसान होगा? ओके, लेट अस डिफाइन ओपन माइंड। व्हाट इज ओपन माइंड? द स्ट्रेंथ टू एनालाइज न्यू आइडियाज। ओके, तुरंत निर्णय लेना हो तो ओपन माइंड से। व्हाट इज ओपन माइंड? थिंकिंग विदाउट प्रेजुडिस। शक हो तो बोलने का, कुछ में अगर कोई भी कुछ मन में हो तो फिर बोलने का। ओके, अवेलेबल टू द अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। मन को साफ रखना, इंट्रोस्पेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। ओके, दूसरों के आइडियाज को एक्सेप्ट करना ओपन माइंड है। ओके, राइट है। ओपन माइंड माना टू बी अवेलेबल टू अदर आइडियाज, भले हम एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट सुनने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जब हम ओपन माइंड नहीं रखते हैं तो जनरेशन गैप्स बहुत हो जाता है। बड़े छोटो अपने बच्चों का नहीं समझ पाते हैं, और बच्चे पेरेंट्स क्यों ऐसे कर रहे हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ जनरेशन गैप या ये जो कम्युनिकेशन गैप इसीलिए आ जाता है क्योंकि क्लोज्ड माइंड है। तो क्लोज्ड माइंड क्यों है बड़ों में? चलो छोटों में तो इतना अनुभव नहीं है ओपन माइंड रखने की, चलो वो तो ठीक है, लेकिन बड़ों में भी ओपन माइंड क्यों नहीं होता है? व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स फॉर द ओपन माइंड, फॉर कीपिंग एन ओपन माइंड? हमने दुनिया देखी है, हमने इन्होंने क्या देखा है, अभी अभी आंख खोल रहे हैं, इन्होंने क्या देखा है, ये एक अहम है। तो हमको सब कुछ पता है, हम जो बोलेंगे वो राइट होगा। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ईगो। तो इसीलिए जब ईगो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है ओपन माइंड रखने के लिए, तो ओपन माइंड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को समझने के लिए हमें सुनना जरूरी होता है। जैसे एक व्यक्ति, एक फादर था, उसका एक बेटा था टीनेजर, और टीनेजर्स को संभालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के वो कहता है कि डॉक्टर, मेरा बेटा जो है वो आजकल मेरा सुनता ही नहीं है। आजकल बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स का नहीं सुनते। मेरा बेटा मेरा सुनता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा रिपीट द सेंटेंस। तो उसने कहा कि मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। सो देन डॉक्टर ने कहा कि डू यू फाइंड एनी फॉल्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट है? तो क्या फॉल्ट है? हाँ जी, मुझे सर नहीं सुनाई दिया आपका भी। ऑन अ लाइटर वेन, ओके। वॉट इज द प्रॉब्लम इन द सेंटेंस, सेंटेंस में गलती कहाँ है? मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता है। लिसन टू द सेंटेंस प्रॉपरली। मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता है, तो इसीलिए मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। माई चाइल्ड डजेंट लिसन टू मी, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम। सेंटेंस में दे समथिंग एल्स, सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। कितने बार रिपीट किया मैंने अभी? सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है। यस, दैट इज द थिंग। मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता है, इसीलिए मैं नहीं समझ पाता हूं। ये सेंटेंस है। माय सन डजंट लिसन टू मी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम, इज अ सेंटेंस। तो वो पिता को समझना है बच्चे का, बच्चा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसको समझना है पिता को, राइट? तो उसको समझना है तो किसको सुनना है? पिता को ही सुनना होगा। तो सुनने की क्षमता तो पिता के अंदर होना चाहिए, तो वो बोलने के लिए देना चाहिए कि चलो बेटा क्या बोलना चाहते हो बोलो, मैं समझूंगा। तो सुनेगा तभी तो समझेगा। तो लेकिन सेंटेंस क्या है? ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा बेटा मेरा सुने तो मैं समझू, कैसे होगा वो गड़बड़? तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज होता है कि ये कोशिश रहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरा सुनना चाहिए। तो लेकिन सुनना चाहिए, लेकिन वो दो टू वेज होना चाहिए ना। तो इसीलिए बड़ों को पहले सुनना चाहिए, तो ताकि वो अच्छी रीति छोटों को वो समझे, तब जाकर के वो होगा, है ना? तो समझ, समझ कब होगा? जब हम सुनने की क्षमता रखते हैं। सुन, थोड़ा सा पेशेंस। तो इसीलिए आप में भी थोड़ा सा पेशेंस होने की जरूरत है अभी तक, क्योंकि मैं वो सेंटेंस कितने बार रिपीट किया। तो इसीलिए वो कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है, सुनने की क्षमता। The need to keep an open mind, positive and negative, absolute and relative. Absolutist जो कि होता है, a saint carrying a woman on his shoulder and helped her to cross a river at the time of flood, but absolutists see this action as negative because as a saint he is not supposed to touch a woman. जैसे कहानी हम बताते हैं ना, एक फ्लड हो, एक पानी बहुत बह रहा था नदी में, वहां एक महिला खड़ी थी और दो संत आए वहां स्विम करके जाने के लिए दूसरे जगह पर। तो वो महिला तो असहायक थी कि उसको स्विमिंग भी नहीं आ रहा था, तो अगर वो छोड़ दे उस महिला को वहां तो वो मर जाएगी। तो उसमें से जो एक बड़ा एक छोटा था, बड़े संत ने क्या सोचा कि चलो उसको मदद करता हूं। तो उसको उठा करके कंधे पर कर गए, तो फिर वो स्विम करके लेके गया दूसरे किनारे पर और उसको वहां छोड़ दिया। जो छोटा था, तो क्योंकि छोटों में तो ये होता है ना कि जो बोला उसको 100% फॉलो करने की आदत होती है, कि माना संत माना महिला को टच नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी होना चाहिए, वो एक बुद्धि में था उसको, कि माना वही वैसे ही क्लोज्ड माइंड। ओके, तो वो फिर मेरे गुरु ऐसे क्यों किया, मेरे गुरु ने ऐसे क्यों किया, वो बहुत प्रश्न चलता रहा। मेरे गुरु ने जो किया तो वो रॉन्ग था, तो उसको रहा नहीं गया रात को। फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने जो आज किया, महिला को कंधे पर बिठा करके क्रॉस कराया, तो वो क्यों किया ऐसे, वो रॉन्ग था ना? तो गुरुजी ने क्या बोला होगा, तुमने उस महिला को अभी तक लेके घूम रहे हो, मैं तो कब का छोड़ चुका हूं। मैंने जो नेसेसरी था, जो आवश्यकता थी, वो किया और छोड़ दिया, है ना? तो वो मन में भी नहीं रहा कि उसके बारे में सोचा तक भी नहीं बाद में, जो आवश्यकता थी उस महिला के जीवन को बचाना था, बचा करके छोड़ दिया ना, तो उसको भूल गए ना। ये दूसरा वाला तो रात भर सोचता रहा, तो ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ऐसा हम भी कई बार ऐसा करते हैं, करते गलती दूसरा कोई और फिर हम लेके घूम रहे होते हैं कि ऐसा इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो दूसरों की गलती को हम लेकर के ढो रहे होते हैं। तो यहाँ इस संदर्भ में समझाने की बात यह है कि वी शुड नॉट बी अब्सोल्यूट, यही माने यही करना ये राइट बात नहीं है, मतलब रिलेटिव, उस परिस्थिति में क्या राइट है वो समझ करके उस अनुसार करना बहुत जरूरी है। अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव टू इंटीग्रिटी, इट्स अ वेरी हेल्पफुल गॉज, इट इज वेरी बेनिफिशियल, गुड राइट आर दोज विच लीड्स टू peace, purity and happiness. Wrong, bad, harmful are those which leads towards personal weaknesses, character defects such as arrogance, lust, greed, violence and dependence. Actually, spiritual perspective में आता है आत्म अभिमानी स्थिति की बात आ जाती है, क्योंकि अगर दुनिया के लोग जो अगर वैल्यूज को फॉलो करना चाहते हैं, वैल्यूज को इनकलकेट करना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल टच अगर नहीं है उसमें, तो क्या वो वैल्यूज अपने जीवन में उतार पाएंगे? लेकिन दुनिया में कई लोगों को देखा है वो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ वैल्यूज, सभी वैल्यूज नहीं कह सकते, कुछ वैल्यूज है, उसके लिए क्या कहेंगे, इज ऑल्सो गुड। लेकिन हमारी जो मान्यता है, वैल्यूज को डेवलप करने के लिए स्पिरिचुअलिटी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। उस संदर्भ में कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? ओके, परिवार के कारण आए होंगे, संघ के रंग के कारण से आया होगा, पूरे जन्मों के संस्कार होंगे। इस संदर्भ में बहुत सारी बातें आती है कि भले वो अडॉप्ट किया है परिवार से, माँ बाप से या फिर फ्रेंड से, कहीं से भी उसने वो वैल्यू को उठाया होगा, लेकिन वो वैल्यू जो है बाद में वो डिटोरिएट होता जाएगा अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो। हाँ, डिटोरिएट होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि आत्मा के अंदर वो शक्ति कम होता जाएगा, तो फिर वो वैल्यू की भी कम होता जाता है। और दूसरी बात है, एक पर्टिकुलर वैल्यू बहुत डोमिनेंट जब हो जाता है तो इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस कैसे, अगर मुझे सच बोलने की आदत है, वो संस्कार अच्छा है, सच बोलने की आदत, लेकिन सच बोलने की आदत इतना आ गई और अरोगेंस आ रहा है उसके कारण से, मेरे अंदर ना सच की शक्ति है, मैं कभी भी मैं झूठ नहीं बोलती हूं ऐसे वैसे, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगा? अभिमान आने के कारण से सभ्यता नहीं होगी, सभ्यता नहीं होगी। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं सत्यता के साथ सभ्यता होना चाहिए। सिद्ध करने की भी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां जो मैं कह रही हूं कि अगर मैं आप में कुछ गलती देख ली, मैं फटक से वो बोल दिया कि आप ये गलती कर रहे हैं, वो तो सच है, लेकिन जिस रीति से मैंने कहा उसको तो ठेस पहुंचा ना, दुख हुआ ना। तो इसीलिए सत्यता तो होना चाहिए, सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन सत्यता के साथ क्या मेरे अंदर सभ्यता है? थोड़ा सा मधुर होकर के बोला, सत्य बोलना चाहिए ठीक है, लेकिन सभ्यता भी होना चाहिए, बैलेंस। हमेशा जो वैल्यूज होते हैं वो कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, सत्यता के साथ सभ्यता होना जरूरी है। केवल सभ्यता है लेकिन सत्यता नहीं है तो क्या होगा? मैनरिज्म है मेरे अंदर, अच्छी रीति बोलना, सॉफ्टनेस है, जेंटलनेस है, सभ्यता है, मैनरिज्म्स है, ये सब है, तो क्या होगा? सत्यता अगर नहीं है तो बहुत डरपोक होगा वो व्यक्ति, सच बोलने की हिम्मत नहीं होता। मैंने आपके अंदर गलती कुछ देखा तो मेरे अंदर सभ्यता है, इसलिए सॉफ्ट हूं, मुझे लगता है कि दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, वो सोच रही हूं मुझे दुख नहीं देना चाहिए, इसीलिए सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। क्यों दुख दे बेचारे को, है ना, वो हिम्मत। तो इसीलिए केवल सभ्यता हो लेकिन सत्यता की शक्ति ना हो, डरपोक, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। सत्यता है लेकिन सभ्यता नहीं है तो हर एक को दुखी हम करते हैं, परफेक्शनिस्ट सत्य, तो वो दुखी करते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा हर वैल्यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट, दो दो वैल्यूज एक साथ चलते हैं। अगर लविंग है, बहुत लविंग है, डिटैचमेंट नहीं है, तो नाम रूप में फंसने की प्रॉब्लम आ जाती है, है ना? बहुत डिटैचमेंट है लेकिन लविंग नहीं है, सुखापन, बैलेंस ऑफ बोथ द वैल्यूज, इंडिफरेंट हो जाए। सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो हर एक को दुखी करते रहेंगे, दुख देने का संस्कार रहता है। तो इसीलिए ये बैलेंस रखने की जरूरत है। तो जब स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है हमारे अंदर, आध्यात्मिक शक्ति नहीं होता, एक वैल्यू डेवलप हो रहा है, दूसरा नेग्लेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए सुखी नहीं हो सकते। सत्यता की शक्ति बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन सभ्यता नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं आता स्पिरिचुअलिटी के बिना। तो आध्यात्मिकता के टच जब होगा, ये बैलेंस होगा, और फिर हम समझेंगे कि फिर ये जो प्यूरिटी, पीस और हैप्पीनेस है तो वो हमारे अंदर स्थाई, परमानेंटली वो हमारे अंदर रह सकता है। द एबिलिटी टू परफॉर्म मॉरल रीजनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल विच कम्स विद द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड कीपिंग एन ओपन माइंड। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, लेकिन हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को देखते हुए हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग वो समझे पहले। क्रिटिकल थिंकिंग माना जो जैसा है उसको वैसे ही देख करके समझना, क्रिटिक करना, टीका टिप्पणी करना, क्रिटिकल थिंकिंग माना कमियां निकालना। तो क्रिटिकल थिंकिंग वैसे तो जरूरी है, लेकिन किस परिस्थिति में जरूरी है और किस परिस्थिति में जरूरी नहीं है? अपने को क्रिटिकली देखना बहुत जरूरी है, दूसरों को देखना जरूरी नहीं है। उसके बजाय हम क्या करते रहे, रिवर्स ही करते रहे, खुद को क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में देख, क्रिटिकली नहीं देखते हैं लेकिन दूसरों को एनालाइज करते रहते हैं सुबह से शाम तक, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, ये है वो है। क्रिटिक्स हमेशा टीका टिप्पणी दूसरों के बारे में करते रहेंगे लेकिन खुद को हम नहीं देखते हैं। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है खुद को क्रिटिकली देखना, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तभी हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग के आधार से ही हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आ सकता है। अपने आप को जब तीसरे व्यक्ति से नजरों से हम देखते हैं तब पता चलता है कि मेरे अंदर कमियां क्या है। तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। द फिलॉसफी ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज गुड एज दैट विच प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। कई बार अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका डेफिनेशन जब हम करते हैं, कुछ लोगों की मान्यता यह होता है कि अगर ज्यादा लोग कहते हैं ये राइट है, ज्यादा लोग मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं ये करना चाहिए, वो हम करने लगते हैं। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ज्यादा अगर लोग मानते हैं ये राइट है तो वो राइट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन कुछ समाज में ऐसा माना जाता है कि मेजॉरिटी जो आता है तो वही करने लगते हैं, है ना। Laws are created by people who are limited by the prevailing social and religious attitudes of their culture and are often influenced by the interest of the ruling party or class. जो laws बनते हैं तो इसीलिए कहते हैं इंडिया में कौन सा constitution है? By the people, for the people and to the people. है ना, लोगों से वो क्रिएट होता है, लोगों के लिए क्रिएट होता है, राइट। तो लोग ही लॉस क्रिएट कर रहे हैं लेकिन ब्रेक भी लोग ही कर, वही लोग करते हैं जो लॉस क्रिएट कर, लॉस बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो लॉस भी जब हम बनाते हैं, चलिए समाज की बात अलग है, समाज को परिवर्तन तो बाद में होगा, तो लेकिन खुद के लिए लॉस जो बनाते हैं उसके लिए हमें सोच समझ करके हमें बनाने की जरूरत है। रिलीजियस एटीट्यूड और कल्चर, तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस तो लोग समाज के ऊपर बहुत सारा है, लेकिन खुद के लिए जब हम समझते हैं तो वो समझना जरूरी है कि जो ज्यादा लोग कहते हैं वो राइट होना जरूरी नहीं है। कई बार ये भी होता है, बड़े जो होते हैं वो वाइज होते हैं कहते हैं, बड़ों का सुनना चाहिए कहते हैं, राइट। इसीलिए आजकल जो कैप्सूल फैमिली सिस्टम चल रहा है कि माता पिता और बच्चे सब अलग अलग फैमिलीज में रहते हैं, पहले तो जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे, तो ये मान्यता थी बड़े बुजुर्ग घर में होना चाहिए क्योंकि उनके पास अनुभव है, वो वाइज होते हैं, वो बुद्धि, उनको अनुभव की शक्ति है, इसीलिए वो घर में होना चाहिए कहते थे। लेकिन आजकल वो ओल्ड एज होम में भेज देते हैं उनको, तो इसीलिए वो जो कैप्सूल फैमिलीज जो उनके साथ पास अनुभव ज्यादा ना होने के कारण से फिर गलतियां करते रहते हैं। लेकिन दूसरी भी मान्यता ये है कि अगर बुजुर्ग है भी घर में, अगर वो वाइज नहीं है तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। तो माना, अच्छा, अगर वो वाइज नहीं है प्रैक्टिकली लेकिन बोला गया हमें कि वो वाइज है, उनके हर बात को हमें सुनना चाहिए, तो हर बात जब हम सुनने लगते हैं तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। माना कहने का भावार्थ ये है कि विजडम जो है उम्र के साथ नहीं आता, उम्र के साथ तो अगर हम चाहते हैं वो आता है। यंग एज में भी अगर हम वाइज बनना चाहे वो हो सकता है। तो उम्र के साथ, एज के साथ विजडम का कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एज। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो ज्ञान में आ जाते हैं, यानी अच्छी रीति स्पिरिचुअलिटी समझने लगते हैं, लेकिन बड़े जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको वो उस लेवल का समझ नहीं है, राइट? तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में कौन वाइज हो गए हैं? बच्चे, राइट? तो वो इसीलिए हमें समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार देखते हुए हमें डिसीजंस लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बड़े होना माना वो 100% वाइज होंगे ही, ये जरूरी नहीं, लेकिन ये भी बात है कि उनको डिसरिगार्ड भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 100% वाइज होंगे ही नहीं तो वो हर बात उसको नकार दो, ये भी नहीं। सो वी हैव टू हैव बैलेंस ऑफ बोथ। वैसे तो इस किताब में एक ऐसे सेंटेंस, ये गॉड्स मस्ट बी क्रेजी करके एक फिल्म का सीरीज आया था अफ्रीकन डेजर्ट का, लहरी डेजर्ट में कैसे वो, क्योंकि आदिवासी लोग हैं वहां, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग जिस रीति से सोचते हैं, और बाहर के जो लोग आते हैं सब उनके, जिनके पास सब कुछ फैसिलिटीज है, तो वो लोग जब उस डेजर्ट में आते हैं वो लोग कैसे सोचते, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ द कल्चर्स, है ना? तो वो फिर कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के प्रति, आश्चर्य होता है। जो कल्चर्ड वाले होते हैं, जो शहर से आते हैं डेजर्ट में आदिवासियों, क्योंकि वो लोग प्लास्टिक बॉटल भी नहीं देखे होंगे, तो वो प्लास्टिक बॉटल देख करके वो कैसे वो चिल्लाते, ये सब कुछ उसमें दिखाया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड एक्चुअली मूवी है वो, या तीन या चार मूवीज वो एक सीरीज में आया है, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी करके। तो उसमें ये बताया गया है कि जो इंटीग्रिटी है वो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आदिवासी व्यक्ति है तो उसका जो सोच है कल्चर का इफेक्ट है आदिवासी का, तो वो जो ऑलरेडी जिसके पास सब कुछ है तो उसका भी उसका इफेक्ट है। तो इंटीग्रिटी भी है तो वो हर एक कल्चर के आधार से वो डेवलप हो, दूसरे कल्चर वालों को देखेंगे तो वो शॉक लगता है। जैसे फॉरिनर्स है, फॉरिनर्स बाहर से आते हैं इंडिया में, आते ही उनको शॉक लगता है कि ऐसे भी लोग जीते हैं स्लम्स में, झोपड़पट्टी में, ये उन्होंने देखा नहीं होगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर कल्चर बेस्ड, ये बात है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस, फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव द सोल एक्सपीरियंसेस इंटीग्रिटी व्हेन इट्स थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस करेस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल क्वालिटीज विच आर पीस, प्योरिटी, लव, ब्लिस एंड पावर। वी ऑल इसके बारे में हमने चर्चा की है पहले। नो मेटीरियल ऑब्जेक्ट इज इनहेरिटली पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउ वी यूज इट मेक्स इट सो। जो कोई भी स्थूल चीज है वो अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। व्हेन देर इज लॉस ऑफ स्पिरिचुअल पावर देर इज टेंडेंसी टू बी मोटिवेटेड बाय मेटीरियल डिजायर्स, एंड व्हेन स्पिरिचुअल पावर इज रिस्टोर्ड देर इज टेंडेंसी टू बी मोटिवेटेड बाय स्पिरिचुअल वैल्यूज। अगर किसी व्यक्ति के पास गन है, वो एक आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है कि जो बॉर्डर पर रह करके सुरक्षा कर रहा है, या फिर टेररिस्ट भी हो सकता है। तो गन बाय इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट बैड, लेकिन किस काम के लिए यूज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, है ना? तो जब मेटीरियलिज्म बढ़ता जाता है तो फिर वो वही मेटीरियल चीजों को हम रॉन्ग चीजों के लिए, रॉन्ग इंटेंशन से हम उसको यूज करते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी बढ़ता जाता है तो स्थूल चीजों को, मेटीरियल चीजों को हम पॉजिटिवली हम यूज करते जाते हैं। इसीलिए जब भी बाहर से लोग आते हैं ना इस संस्था में, देखते हैं जो पहले बार आते हैं तो कहते हैं कि आप सब कुछ यूज करते हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ, सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, कंप्यूटर्स है, सोलर है, सब कुछ, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, त्याग क्या किया आपने? तो हम कहते हैं हमको त्याग, विकारों का त्याग सिखाया जाता है, मेटीरियल चीजों का त्याग हमको नहीं सिखाया जाता है। क्यों नहीं सिखाया जाता है? क्योंकि मटेरियल चीजों को हम मालिक बन करके यूज करते हैं, उसके अधीन नहीं होते हैं। तो यूज किया, नहीं है तो भी ठीक है। गाड़ी है तो यूज किया, गाड़ी नहीं है तो पैदल चलने के लिए भी हम तैयार है। तो वी आर द मास्टर्स ऑफ द मटेरियल थिंग्स। ऐसा नहीं है कि उसके अधीन होकर के चलना, यही हमको सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें कुछ ऐसे धर्मों में ऐसा कहते हैं कि वो लोग गाड़ियों में चढ़ते ही नहीं है। जैसे जैनिज्म में जो जैन संत होते हैं वो हमेशा पैदल ही जाते हैं, ना गाड़ियों में जाते हैं ना प्लेन में, तो वो बैठते ही नहीं है। तो वो हमको नहीं सिखाया जाता, उन चीजों का त्याग हम नहीं करते हैं। सेवा अर्थ तो कहीं भी प्लेन में भी जाना होगा तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। हाँ, प्लेन का टिकट नहीं मिला, ट्रेन में भी जाना हुआ और वो भी जनरल क्लास में जाना होगा तो भी हम जाने के लिए तैयार है, है ना। तो ऐसा है तो यूज किया, नहीं है तो नहीं यूज किया। तो वो उसके अधीन नहीं है। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी माना चीजों को ही त्याग कर दो, नहीं है। चीजों को यूज करना है, है तो यूज किया लेकिन उसके अधीन नहीं है, राइट। द एफेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑन मैटर। वैसे तो इसमें किताब में एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया हुआ है। एक बहुत पोल्यूटेड को खराब पानी का उन्होंने सेल लेकर के फिर उसका फोटोग्राफ लिया है और उसी पानी को प्रेयर करते समय उसको रख करके फिर उस क्रिस्टल बना करके फिर उसका पिक्चर लिया है। तो दोनों का पिक्चर आप देख रहे हैं। तो माना मेडिटेशन का या फिर थॉट्स का इफेक्ट फिजिकल चीजों पर भी कैसे पड़ता है, और स्पेशली पानी पर बहुत जल्दी ज्यादा पड़ता है क्योंकि सॉलिड चीजों के सेल में ये जो है उसको हम चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन पानी के जो सेल्स है बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं तो उसके फॉर्मेशन को उसके इसको हम बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए क्यों कहते हैं कि पानी पीते समय आप थोड़ा योग करके उसको दृष्टि दे करके करो, क्योंकि पानी पर बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है थॉट्स का। तो इसीलिए पानी पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये रिजल्ट पाए कि उसका इफेक्ट कैसे होता है और बहुत पॉजिटिवली होता है। इंटीग्रिटी इज इंटरनल कंसिस्टेंसी दैट कम्स फ्रॉम राइटियस रिगरस ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। इंटीग्रिटी माना ऑनेस्टी है अंदर हर लेवल में, थॉट लेवल में, फीलिंग्स लेवल में, और वो कंसिस्टेंट है, हमेशा वो एग्जिबिट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ एज अ होल एंड अनडिवाइडेड बीइंग। आत्मिक स्मृति एज अ होल, यू आर वन थिंग इंटरनली एंड सेम एक्सटर्नली। जो अंदर है वही हम बाहर है। द इम्पैक्ट ऑफ इंटेग्रिटी। द एंशियंट ग्रीक्स हैड टू वर्ड्स ऑफ टाइम। टाइम को दो शब्दों में, एक्चुअली क्रोनस टाइम और काइरोस टाइम कहते हैं। क्रोनस, व्हाइल द फॉर्मर रेफर्स टू द क्रोनोलॉजिकल और द सीक्वेंशियल टाइम, द लेटर सिग्निफाइज द टाइम इन बिटवीन, द मोमेंट ऑफ अनडिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग स्पेशल हैपेंस। माना क्रोनोस माना जैसे हम मेजर करते हैं टाइम को आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में, उसको क्रोनोस टाइम कहते हैं। यहां से डाइनिंग हॉल जाने में 10 मिनट लगता है कहते हैं, या फिर वो ड्राइव आधे घंटे का ड्राइव है। टाइम जो घंटे, मिनट और सेकेंड्स में हम मेजर करते हैं उसको क्रोनोस टाइम कहते हैं। काइरोस टाइम माना मोमेंट, जो हम मोमेंट जीते हैं, मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशल मोमेंट होते हैं, राइट। आप दो दिन पहले भोजन में क्या खाए थे, दोपहर के भोजन में? आज 7th है, राइट। 5 तारीख को आप दोपहर के भोजन में क्या खाए थे? क्यों याद नहीं है? हा? कौन सा सब्जी? मीठी बूंदी। ओके, ओके 25th दिसंबर को रात के डिनर में क्या खाए थे? भूखे रहे थे, क्रिसमस डे था, भूखे क्यों रहे थे? आप क्रिसमस केक खाया था, क्यों नहीं खाते केक? नहीं, एगलेस केक बनते हैं हमारे यहां, तो एगलेस केक बनते हैं, मधुबन में भी तो केक बनते हैं। अच्छा ओके याद नहीं है, है ना? क्यों याद नहीं? उस आपने किया था ना, भोजन तो किया था, इम्पोर्टेंस नहीं, ठीक है, साधारण वो चलता है, किया, नॉर्मल किया, तो वो याद नहीं रहा, रूटीन वर्क। लेकिन ऐसे स्पेशल मोमेंट्स जो है लाइफ के आपको याद रहेगा, एक अच्छा समय बिताया होगा किसी के साथ, किसी ने अच्छे बोल बोले होंगे, या फिर गुस्सा भी किया होगा तो भी याद रहेगा, एक्सट्रीम नेगेटिव और एक्सट्रीम पॉजिटिव वो याद रहता है, उस दिन उसने ऐसा किया था वो याद रहेगा। दोज आर द मोमेंट्स वी रिकॉर्ड इन अवर माइंड्स, गुड मोमेंट्स एंड द बैड मोमेंट्स। द मोमेंट जो हम जीते हैं वो उस मोमेंट को कहते हैं काइरोस टाइम। तो इसीलिए हमें क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी माना टाइम के अनुसार भागना नहीं, क्योंकि मैकेनिकल लाइफस्टाइल में सिटीज में रहते 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 टाइम के साथ, घड़ी के साथ, घड़ी के सुई के साथ हम भी भागते रहते हैं। 8 बज गया भागो, ये हो, 12 बज गया ये करो, 10 बज गया सो जाओ, मैकेनिकल करते, टाइम के अनुसार हम सब कुछ चलते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी माना मोमेंट में जीना, उस क्षण में जीना, उस क्षण को एंजॉय करना, लिव इन द मोमेंट, लिविंग इन द नाउ, तो वो है काइरोस। हर चीज को हम एंजॉय करते जाए, उसके पूरा लिव टू द कंप्लीट, हर मोमेंट को लिविंग टू द एक्सट्रीम, लिविंग टू द हाईएस्ट लेवल, हर मोमेंट, दैट इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव माना हाँ हम 1 घंटा बैठ करके योग लगाया, दैट इज क्वांटिटेटिव, 1 घंटा लगाया, दैट इज क्रोनोस। काइरोस, उस 1 घंटे में क्या मैंने अनुभव किया, क्या मैंने अनुभव किया, वो है काइरोस। सो लिविंग इन दैट मोमेंट, क्वालिटी, क्वांटिटी इज क्रोनोस, क्वालिटी इज काइरोस। सो वी हैव टू लिव क्वालिटेटिवली, नॉट क्वांटिटेटिवली। The effect of the divine is also very much important in integrity. माना divine माना परमात्मा, परमात्मा का योगदान, क्योंकि परमात्मा के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं तो अंदर की जो impurity है वो निकलता जाता है और वो integrity बढ़ता जाता है। तो इसीलिए effect of the divine is very much important on our lives, each one's life. एंड इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए नॉलेज ऑफ कर्म फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म के बारे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कर्म करते समय केवल एक्शंस डजंट काउंट, द इंटेंशंस बिहाइंड दोज एक्शंस काउंट अ लॉट। हम किसी को मदद कर रहे हैं लेकिन अंदर से ये भावना है आज मैं इसको 10,000 रुपया दे रहा हूं लेकिन कल इससे 1,00,000 निकालूंगा। लेने की भावना से मैं दे रही हूं वो पुण्य नहीं है, वो गलत है। सिर्फ देने की भावना से मैं दे रही हूं वो पुण्य है। तो इसलिए हर कर्म के पीछे इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। एक डॉक्टर चाकू को प्रयोग कर रहा है, नाइफ को प्रयोग कर रहा है, वो दुख दे रहा है पेशेंट को लेकिन सुख देने की भावना से वो दुख दे रहा है, बचाने के लिए, लाइफ बचाने के लिए वो दुख दे रहा है। लेकिन एक टेररिस्ट है वो भी चाकू यूज कर रहा है, वो दुख दे रहा है, राइट। तो इसलिए कर्म फिलॉसफी, कर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट ऑन अ डीपर लेवल, इंटेंशंस लेवल में समझ करके फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। जितना प्योर इंटेंशंस है उतना इंटीग्रिटी ज्यादा है। एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट माना अन एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट एंड एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। अन एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट माना सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फिशनेस, स्वार्थी, हर चीज हर एक से मुझे लेने की भावना है, मुझे आगे बढ़ना है एट एनी कॉस्ट, मुझे पैसा कमाना है एट एनी कॉस्ट, दूसरे भले गरीब हो जाए लेकिन मुझे तो अमीर बनना है, दूसरों के सिर पर पाँव रख करके मुझे ऊपर चढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है एट एनी कॉस्ट। वो है अन एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट माना मुझे आगे बढ़ना है लेकिन दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, विन विन सिचुएशन है, मैं भी आगे बढ़ू लेकिन दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए बहुत सुंदर तरीका जो बाबा हमें बताते हैं वो क्या कहते हैं, पहले आप, पहले आप। जितना हम दूसरों को आगे रखते हैं हम खुद आगे बढ़ जाते हैं। इसे ये नहीं कि तुम पीछे ही पीछे रहो मैं आगे बढ़ जाऊं, नहीं। वैसे आजकल मैनेजमेंट कोर्सेज में भी यही कहते हैं, जितना हम अपने एम्प्लॉयर्स जो चाहते हैं उसको हम देते जाएंगे, अगर वो चाहते हैं उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाना है तो वो फिर उसके अनुसार उनके अपॉर्चुनिटीज बढ़ाते जाएंगे, तो वो खुद खुश रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, है ना। तो ऐसे दूसरों को जितना हम आगे बढ़ाते जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वैसे, लेकिन टाइम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, I have to be accountable for my own actions. क्या मैं कर्म कर रही हूं, मैं सोच रही हूं, मैं बोल रही हूं, लेकिन am I accountable for those things? Very much. क्योंकि हम accountable होंगे अगर हम अगर मेरे life में कुछ गलत हो रहा है, right? सिचुएशंस परिस्थितियां ऐसी आ रही है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे जलस हो रहे हैं, दूसरे मुझे टांग खींच रहे हैं, या फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, लाइफ से फ्रस्ट्रेट होती जा रही हूँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, यूजुअली हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, राइट। इसने ऐसा किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा किया, तो वो क्या ब्लेम करने से परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी? नहीं, नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सोच को बदलना होगा। सोच को बदल के क्या करना होगा कि मुझे अपने कर्मों को अच्छा करते जाना होगा, क्योंकि ये कहा जाता है अगर मेरे भाग्य में है कोई रोक नहीं सकता ना मिलने से, अगर मेरे भाग्य में नहीं है दूसरों की लाख कोशिश करने पर भी मुझे मिल नहीं सकता, है ना। तो इसलिए आई एम अकाउंटेबल फॉर माय ओन एक्शन एंड आई एम अकाउंटेबल फॉर माय ओन फॉर्च्यून, फॉर माय ओन भाग्य। तो इसीलिए जब हम अपने जवाबदारी ले लेते हैं, खुद की जवाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, तो फिर हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट भी जरूरी है, जितना हम स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करते जाएंगे तो इंटीग्रिटी बढ़ता जाएगा। तो लैक ऑफ इंटीग्रिटी क्यों है, इंटीग्रिटी की कमी क्यों हो रहा है, मेटीरियलिज्म, मेटीरियलिज्म जितना बढ़ता जा रहा है उसको अक्वायर करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसीलिए इंटीग्रिटी बढ़ता जा रहा है। मेटीरियलिज्म इंप्लाइज दैट ओनली मैटर इज रियल एंड सो ओनली मेटीरियल वैल्यूज आर वैल्यूएबल। अमीर ये किस लिए होना है, क्योंकि समाज में बहुत सम्मान मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, तो ये होता है, मतलब चीजों का वैल्यू है, उसके पास कौन सी गाड़ी है भाई, कॉन्टेसा है, करोला है, बीएमडब्ल्यू है, तो वो गाड़ी के आधार से उसका वैल्यू बढ़ गया, है ना। मटेरियल अगर वो साइकिल पे आएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। बीएमडब्ल्यू में आएगा तो चीजों को हम वैल्यू देते हैं, मटेरियलिज्म, व्यक्ति की वैल्यू नहीं है। मटेरियलिज्म डिनाइज एंड डिस्काउंट्स द सटल एंड इनटैंजिबल विच इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन। मटेरियलिज्म को जितना हम वैल्यू देते जाएंगे तो उस व्यक्ति का जो वैल्यू है हम कम करते जाए। भले वो साइकिल पे आ रहा है लेकिन उसके क्वालिटीज बहुत अच्छे हैं, आत्मा की क्वालिटीज, उसकी धारणाएं बहुत अच्छा है, तो उसका कोई परवाह नहीं है। बीएमडब्ल्यू में आ रहा है वो भले कितना भी खराब व्यक्ति हो और उसको हम वैल्यू दे रहे। तो व्यक्ति का वैल्यू नहीं है लेकिन चीजों की वैल्यू है। मटेरियलिज्म इज नेगेटिव बिकॉज इट कंसिडर्स ओनली द शॉर्ट टर्म और द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, तुरंत प्राप्त होना, अभी अभी चाहिए सब चीजें। अ मटेरियलिस्टिक पर्सन अवॉइड्स द एफर्ट एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस विद देयर कॉजेस एंड इंस्टेड टेंड्स टू ट्राइवलाइज, डिस्काउंट और डिनाई देम। मटेरियलिस्टिक जो व्यक्ति है वो केवल शॉर्ट टर्म ये जो अपॉर्चुनिटीज है या सक्सेस है उसको हम देखते हैं। यूजली कहीं बार हम स्पिरिचुअल मार्ग में भी, आध्यात्मिक मार्ग में भी वो कभी कभी आ जाता है, सोचते हैं कि मुझे भाषण के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, भले कोई भी कुछ भी करे और प्रेशराइज, ये करना, दैट इज ऑल्सो समथिंग नेगेटिव। वो भी मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि मुझे फेमस होना है, मुझे ये होना है, तो ये नहीं है। तो इसीलिए ये देखना है कि लॉन्ग टर्म, तो मम्मा हमेशा कहा करती थी अगर कोई सेवा करते हैं, आपस में एकता अगर नहीं है, सेंटर में 20-25 लोग हैं सेंटर में जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक व्यक्ति को भी मैंने दुख दे करके कोई भी मैंने सेवा की, बाहर की सेवा की, भले बहुत लोग प्रभावित हो गए मेरे भाषण से या मेरी सेवा से, बहुत अच्छी वाह हो गई, लेकिन घर में 2-3 लोग दुखी हो गए, क्या वो सेवा है? हाँ, ये है इंटीग्रिटी। माना मटेरियलिज्म, माना कुछ लोगों की परवाह ना करके मुझे वो हासिल करना ही है, दैट इज समथिंग रॉन्ग। इसीलिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, माना इन लोगों के साथ तो मुझे रहना ही है ना, ये तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है। जो सेंटर में आते हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है, तो वो रिलेशनशिप को मुझे महत्व दे करके जो शॉर्ट टर्म है तो उसको मुझे छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय हम क्या करें, अगर मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो हम ये सोचेंगे ये गए भाड़ में, ये तो अपने है ही है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये करना है तो ये तो गड़बड़ हो गई ना फिर। हाँ, ये हो जाता है। तो सूडो इंटीग्रिटी, दूसरे प्रकार के ये जो लोग होते हैं, सूडो इंटीग्रिटी, सूडो इंटीग्रिटी माना फॉल्स इंटीग्रिटी, दिखाते कुछ है और होता कुछ। द कंसर्न ऑफ वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी हैज गिवन देम अ मार्केट वैल्यू, दिस जनरेटेड अ कैटेगरी ऑफ पीपल हु क्लेम हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स बट आर क्वाइट विलिंग टू एक्सप्लॉइट एंड मैनिपुलेट यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियलिज्म फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। कहीं ऐसे धार्मिक संस्थाएं जो है वो सूडो इंटीग्रिटी है उनके अंदर, दिखाते कुछ है लेकिन होता कुछ और है, वो कहते कुछ और है लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है ना, सो सूडो इंटीग्रिटी, ऐसा नहीं होना। तो उसके कारण से वो एक्सप्लॉइट कर, स्पेशली जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट कैसे बनते हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। वो कहते हैं अगर तुम मरोगे तो जन्नत मिलेगा, भगवान के नाम पर तुम अपने आप को समर्पित कर लोगे तो जन्नत मिले, तो एक्सप्लॉइटिंग द रिलीजियस वैल्यूज, तो दिस इज सूडो इंटीग्रिटी। कॉर्पोरेशंस लाइक Soft drink manufacturers in India, in the name of providing benefit, have destroyed the water table that local people depend upon. Actually, कहते हैं एक ग्लास एक बॉटल का जो कोका कोला जो बनाना है तो बनाने के लिए 20 लीटर पानी खर्च होता है. तो उसका डिटेल्स एक्चुअली आपका फोर्थ किताब में आता है. तो उसका तो एक एक कोका कोला हो या पेप्सी हो या कुछ जो भी हो तो एक एक बॉटल मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा पानी खर्च हो रहा है. तो लेकिन इन लोगों का कहना है जो फॉरेन ये मैन्युफैक्चरर्स है ये कहना है कि पेप्सी एडवर्टाइजमेंट देते हैं आपके प्यास बुझाने के लिए पेप्सी यूज करिए, आपके प्यास बुझाने के लिए कोका कोला यूज कर लिए. तो दिस इज सुडो इंटीग्रिटी. दे आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, एक्सप्लॉइटिंग द पीपल एंड देन दे आर प्रेजेंटिंग समथिंग एल्स. तो इसीलिए हमको रियालिटी को समझने की जरूरत है. जनरलाइजेशन इज ऑल्सो सुडो इंटीग्रिटी. जनरलाइजेशन माना जैसे ऑल वुमेन आर फिकल, महिलाएं ऐसे है, बहनें ऐसे होती है, या भाई ऐसे होते हैं, अमेरिकन ही ऐसे होते हैं, इंडियंस ही ऐसे होते हैं, या मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं. जो जनरली हम सभी को मिला करके कैटेगरी ऑफ पीपल को कह देते हैं ये जनरलाइजेशन है. ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है. ये रॉन्ग है क्योंकि हम जब कहते हैं सभी महिलाएं ऐसी है तो सभी महिलाएं ऐसे होती है क्या? एक आद को देख लिया ऐसे तो जनरलाइज कर लिया सभी बहनें ऐसी होती है. तो एक आद अमेरिकन को ऐसा करते हुए देख लिया तो कह दिया कि सभी अमेरिकन ऐसे हैं. तो इसलिए भाई ये भाषा हम कभी यूज नहीं करें, सभी ऐसे हैं. तो ये जनरलाइजेशन हो जाता है. स्वीपिंग एंड पिजोरेटिव जनरलाइजेशन आर ऑफन मेड अबाउट सिग्निफिकेंट माइनॉरिटीज इन एनी कम्युनिटी लाइक ऑल डार्क स्किन्स आर स्टूपिड. तो ऐसे हम लोग कहते हैं. जनरलाइजेशंस आर नेगेटिव बिकॉज देर इज नो सच थिंग एज ऑल इंडियंस आर लाइक दिस, ऑल अमेरिकन्स आर लाइक दिस, ऑल मुस्लिम्स आर लाइक दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड नेगेटिव एक्शन, वी परफॉर्म अ नेगेटिव एक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस विच लीड्स टू शॉर्ट साइटेडनेस और सेल्फिशनेस. जजमेंट गेट्स ओवर शैडोड बाई डिजायर्स, डिसरेस्पेक्ट एंड सम नेगेटिव इमोशंस. वेन वी बिकम स्लेव ऑफ अवर डिजायर्स वी एक्ट अगेंस्ट अवर कॉन्साइंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी. मतलब इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाने के लिए एक और कारण हो जाता है डिजायर. तो इच्छाएं, तो इच्छाओं को भी हमें कम करने की जरूरत है. द डीपेस्ट फोर्स दैट मेक्स एन एक्शन नेगेटिव इज व्हेन इट इज परफॉर्म्ड इन अरोगेंस और फॉल्स ईगो. ईगो इज अ कॉज ऑफ डिजायर्स एंड वीकनेसेस. Desires veil integrity and make us believe that the negative is good. They delude us so that false appearances seem real. आशाएं, इच्छाएं जो बढ़ती जाएगी तो लगता है कि ये सभी अच्छी चीजें हैं, तो ये होना चाहिए. तो फॉल्स चीजें भी रियल लगने लगते हैं. तो इसलिए कहते हैं ना, दूर का जो पहाड़ है वो सुहावना कहते हैं. तो वो सब दूसरों के प्लेट में जो भोजन है वो हमेशा अच्छा लगता है. हाँ, दूसरों की थाली में घी नजर आता है. तो इसलिए इच्छाओं को हमें कम करते जाना है. कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, हार्डली नो एनी डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट. तो वो समझ करके हमें चलने की जरूरत है. वार्निंग्स इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अगेंस्ट गिविंग इन टू द टेम्पटेशंस ऑफ फिजिकल डिजायर्स एंड अट्रैक्शंस इम्प्लाय दैट वी लैक इंटीग्रिटी बिकॉज वी हैव डिजायर्स सो पीपल ट्राई टू सप्रेस देम. इच्छाओं को जितना हम सप्रेस करते जाएंगे वो फॉल्स इंटीग्रिटी है. अंदर इच्छा है लेकिन बाहर मुझे दिखाना नहीं है, है ना? तो उसको निकालना है पहले. एक्चुअली सप्रेस नहीं करना है. कई बार हमें ये भी समझने की जरूरत है, ग्रीड या राइट, अधिकार है या फिर लोभ है। जैसे कि अगर कोई दहेज के लिए कहते हैं, कोई कुछ ऐसे एरियाज है, कहते हैं कि पुरुष कहते हैं कि ये मेरा राइट है ना, ये मेरा अधिकार है ना। माँ बाप भी कहेंगे, बेटे का जो माँ बाप है वो भी कहेंगे, हमने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, ये हमारा अधिकार है दहेज लेना। तो ये अधिकार है या नहीं है? ये लालच है ना। तो लालच और अधिकार के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। तो राइट क्या है और ये है लालच क्या है। Another example of the clash between rights and greed can be seen in the argument between the vegetarianism and non-vegetarianism. जो मांसाहारी खाते हैं वो कहते हैं कि ये तो हमें विटामिन्स और प्रोटीन्स ये सब चाहिए तो फिर खाने की जरूरत पड़ती है। वेजिटेरियन जो फूड खाते हैं उनके अंदर इतना विटामिन्स नहीं मिलता है तो इसलिए नॉनवेज खाना जरूरी है। और वेजिटेरियन जो खाना है वो गरीबों का खाना है, कहते हैं घास फूस खाना होता है वो तो गरीबों का खाना है, नॉनवेज खाना तो वो अमीरों का खाना है, ये मान्यता है। वो कहते हैं कि वो मेरा अधिकार है नॉनवेज खाना, लेकिन वो अधिकार नहीं है लेकिन ग्रीड है। This unit proposes a strategy to counter the negative by looking for the positive in the seemingly negative, by finding the silver line in the black cloud, and by asserting that everything that happens is for the best. इसलिए integrity को develop करना है तो हमारे दृष्टिकोण को positive बनाना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। Many events and situations present themselves as negative. However, we do have a free choice. कहीं परिस्थितियों को हम देखते हैं तो नेगेटिव दिखाई देने लगता है, लेकिन हमें हमेशा चॉइस है कि हम नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे उस परिस्थिति के बारे में। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एक्चुअली वो जो दूसरा चित्र है, ये चित्र है, शायद कुछ लोगों ने इस चित्र को पिक्चर को देखा होगा। अच्छा, ये पिक्चर देखा है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, राइट? तो ये इस चित्र में क्या देख रहे हैं सभी, इसमें यंग लेडी भी है ओल्ड लेडी भी है, तो उसको एक्चुअली डिटेल में जाने के लिए ये टाइम नहीं है। इसमें दो चित्र है, यंग लेडी भी है और ओल्ड लेडी भी है, और दृष्टिकोण से डिपेंड करता है, कुछ लोग ओल्ड लेडी को देखते हैं, कुछ लोग यंग लेडी को देखते हैं। मतलब कहने का भावार्थ है हमारे दृष्टिकोण जैसा है वैसे हम सोचते हैं। और इस चित्र में भी देख रहे हैं, दो चीजें देख रहे हैं, एक चीज है दो है, एक है फ्लावर वॉज, सिर्फ व्हाइट को देखेंगे तो फ्लावर वॉज दिखता है, या सिर्फ ब्लैक को देखेंगे तो दो लोग आमने सामने हैं, है ना। तो हमारे दृष्टिकोण में है सब कुछ, परिस्थिति वही होगा लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है हर परिस्थिति का। तो ये कहने का भावार्थ, ठीक है। ओम शांति। केवल ये थोड़ा सा जिस्ट में था, एसेंस में था, लेकिन इंटेग्रिटी का जो चैप्टर है बहुत डीप में है, बहुत डीप में है। थोड़ा सा दो तीन बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, ओम शांति।